जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला का चौथा प्रकरण है। हमने कौन कौन सा मतलब चौथा है, इससे ये तो क्लियर है कि पहले तीन प्रकरण समाप्त हो चुके हैं। कौन कौन से प्रकरण थे? द्रव्य गुण पर्याय। ये नाम ऐसा है कि सबको अपने में याद होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी अपनी चर्चा आएगी, मैं कौन हूँ, जीव हूँ, द्रव्य हूँ, सबसे पहले, क्योंकि ये जो विश्व है जिसके अंदर हम रहते हैं, मैं विश्व की परिभाषा जब हम पढ़ते हैं तो विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो द्रव्य कितने हुए? छह हुए। ये नक्के ना, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो उन छह द्रव्यों में से मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य हूँ। तो इस जीव की जब भी चर्चा आएगी तो सर्वप्रथम द्रव्य की चर्चा, गुण की चर्चा और उसके साथ पर्याय की चर्चा भी आएगी। तो हमारा अब तक द्रव्य अधिकार, गुण अधिकार और पर्याय अधिकार की समाप्ति हुई। उसके बाद आया है चौथा अधिकार, अभाव अधिकार। अगर अपन ऐसा कहें कि इसके पहले जितनी बात आई वो भाव रूप में आई और अब जो चर्चा आएगी वो अभाव रूप में आएगी। अभाव का मतलब तो समझते हैं ना, अभाव मतलब जनरल लैंग्वेज में क्या, अभाव मतलब क्या? आपके पास में मानो किसी चीज का, मतलब आईफोन का अभाव है, मतलब क्या है? नहीं होना ना, सीधी बात में अभाव मतलब क्या? नहीं होना। मतलब जिस भी चीज की चर्चा कर रहे हैं उस चीज का ना होना मतलब उसका अभाव है, है ना। यहाँ तो किसी को किसी का अभाव नहीं ना, पार्ला में तो सब कैसे हैं, सब सुखी है ना, सबके पास सब चीजें हैं, तो किसी का अभाव नहीं। समझ रहे हैं, यहाँ अभाव नहीं है ना, सब अपने पास तो क्या है, सब चीजें हैं अपने पास, तो सब चीजों की साधन है, सब चीजों की सुविधाएं हैं, तो अपने पास किसी चीज का अभाव है कि नहीं है? किसका अभाव है? पैसे का? हाँ, तो जो चर्चा यहाँ चल रही है, अभाव की चर्चा चल रही है, क्यों? अभाव मतलब क्या? देखिए, वास्तव में ये अभाव भी अभाव नहीं है, अभाव भी वास्तव में स्वभाव ही है। ये जो अभाव की चर्चा है, ये अभाव मतलब, जैसे अपन ने भी लौकिक में देखा, अभाव मतलब मेरे पास इस चीज का ना होना, रुपए का, पैसे का ना होना, इसको हम अभाव मानते हैं वर्तमान में, इसको हम अभाव मानते हैं। लेकिन जब मेरी चर्चा चल रही है, जब इसके अंदर ये जो अभाव की चर्चा चल रही है, अभाव मतलब इस द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ना होना, जैसे आपने पैसा कहा कि पैसा का मेरे में अभाव है, मेरे पास पैसे का अभाव है, तो एक चीज का दूसरी चीज में ना होना वो अभाव है। तो वैसे ही जब इस द्रव्य की चर्चा चल रही है तो इस द्रव्य के अंदर दूसरे द्रव्य का ना होना ये वास्तव में क्या है? अभाव है। तो अब बताओ वो अभाव है कि स्वभाव है? समझ में है मैंने क्या कहा, कि जब अपन अभाव की चर्चा कर रहे हैं ना, अभी किसका प्रकरण चल रहा है? अभाव का प्रकरण चल रहा है। अभाव मतलब क्या होता है? ना होना, जिस चीज का ना होना, मतलब उस चीज का मतलब अभाव है ना। जैसे अगर कोई कहे कि किसी के पास बाहर अगर कहे तो रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, इन चीज का अभाव है, है ना। हमारे पास तो इनमें से सबका सद्भाव है, किसी का अभाव नहीं है। लेकिन जब अपनी चर्चा चल रही है उसको भी अगर देखा जाए तो उसका अभाव नहीं है, वो वास्तव में क्या है कि उसको नहीं, उसके प्रभाव में हम जी रहे हैं। हम क्या जी रहे हैं? हम उसके प्रभाव में जी रहे हैं, क्योंकि उन चीजों से हमारे सुख दुख का कोई संबंध ही नहीं है। समझ में आया क्या कहा, कि बाहर की जो चर्चा चल रही है ना, रोटी, कपड़ा, मकान आदि की जो चर्चा है, उस चीज से हमारा सुख दुख का सीधा कोई संबंध ही नहीं है। वो तो हम उसके प्रभाव में, प्रभाव कैसा, कि इसके पास इतना पैसा है, मेरे पास नहीं है। तो ये जो प्रभाव दिखाई दे रहा है कि इसके पास तो इसकी थाली में इतने व्यंजन है, मेरी थाली में कुछ नहीं है, तो ये दुख जो है वो दुख उस वस्तु का दुख नहीं है। ये जो यहाँ दुख जो हो रहा है कि मैं उस चीज से जो प्रभावित हूं कि इतना पैसा होगा तो मैं एक बंगला ले लूंगा, इतना पैसा होगा तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, है ना, पार्ला में जुहू बीच में एक क्या ले लूंगा, फ्लैट ले लूंगा, है ना, 3 करोड़ का 4 करोड़ का मैं एक फ्लैट ले लूंगा। तो अभी वो फ्लैट मेरे पास नहीं है, वो फ्लैट से सुख दुख नहीं है, सुख दुख किससे है, मेरी जो मान्यता चल रही है ना कि जब मैं ये फ्लैट ले लूंगा तो मैं कैसा हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, और अभी मैं कैसा हूं, दुखी हूं। तो ये जो मान्यता है, परद्रव्य से हमें राग द्वेष नहीं है, उस परद्रव्य के सामने जो हमारी दृष्टि चल रही है, हम जो परद्रव्य को देख रहे हैं और उस परद्रव्य को देखते समय जो दृष्टि हमारी चल रही है ना, उस दृष्टि के कारण वास्तव में हमें क्या है कि उस जाति का दुख हमारे उत्पन्न होता है। तो अब ये जो चर्चा चल रही है, पुनः किसकी चर्चा चल रही है, अभाव की चर्चा चल रही है। कौन सा प्रकरण है, चौथा प्रकरण है। बुक ले लो, जिन जिन के पास नहीं है बुक ले लीजिए। आसान है, गुजराती हिंदी सब समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ बस कोई बात नहीं, दो दो में एक शेयर कर लीजिए, कोई बात नहीं, है पर्याप्त है, दो दो में कर। चलिए 111 नंबर का पाना है, 2 क्लास हो चुकी हैं इसके ऊपर, और भी राग भाव प्रधान हमारी चर्चा चल रही है। मूल सबसे पहले हमें अभाव समझना है कि जो अभाव की चर्चा आती है, देखो जब जब स्वभाव की चर्चा आती है हम खुश हो जाते हैं। स्वभाव मतलब पावर, मेरे अंदर अनंत गुण है, मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं, ये कैसा है, मेरा स्वभाव है। तो स्वभाव की चर्चा आती है तो हम खुश हो जाते हैं, और जब अभाव की चर्चा आती है तो डिप्रेशन में चला जाता है आदमी, क्या यार अभाव, मेरे में तो इसका अभाव है, मेरे में तो इसका अभाव है। तो यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो अभाव है वो अभाव भी वास्तव में तेरा स्वभाव है। क्या कहा कि ये जो अभाव है वो कोई अभाव नहीं है। अभाव मतलब क्या कहा, आगे स्पष्ट करेंगे कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, तो बताओ अच्छी बात है कि बुरी बात है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव मतलब ना होना, अभाव मतलब ना होना। तो एक द्रव्य का ना, आपका और मेरा आपस में क्या है, अभाव है ना, आपकी सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है। अगर वो अभाव ना रहे तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का नाश हो जाएगा।
स्वभाव के कारण ही है
ऐसा भी कैसे, या ऐसा भी कह सकते हैं स्वभाव भी अभाव के कारण ही है। जैसा आपने कहा ना, स्वभाव भी अभाव के कारण है और अभाव भी स्वभाव के कारण है, दोनों तरफ से अपन कह सकते हैं। क्योंकि अगर अभाव का नाश हो जाए, अगर अभाव का नाश हो जाए तो स्वभाव नहीं बचे। समझ में आया, वापिस से समझना, जिस अभाव की अपन चर्चा कर रहे हैं अगर उस अभाव का नाश हो जाए, अभाव मतलब ना होना, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ना होना, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में ना होना, ये जो अभाव की चर्चा आगे आएगी, अगर इस अभाव का हमने नाश कर दिया कि अभाव मतलब तो ना होना, अभाव को हम हटा देते हैं, तो अगर अभाव को हटा देंगे तो अपना स्वभाव का भी नाश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी हम कहते ना उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण है, द्रव्य कितने हैं, 6। तो जब हमने 6 कहा, जब हमने 6 कहा, इसका मतलब है कि सब द्रव्य कैसे हैं, अलग अलग है। अगर अलग अलग नहीं होते तो हम 6 नहीं कह सकते। जब हमने एक डिजिट कही, 6 कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो द्रव्य है वो कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। और भिन्न भिन्न मतलब जीव का पुद्गल में क्या है, जीव का पुद्गल में क्या है, धर्म का अधर्म में क्या है, आकाश का काल में क्या है। अगर मैं अभाव को हटा दूं, है ना, अगर मैं अभाव का नाश कर दूं तो क्या होगा, जीव और पुद्गल एक हो जाएगा। आकाश काल मतलब 6 के 6 द्रव्य, बाद में फिर वो 6 द्रव्य बचेंगे ही नहीं, क्या बच जाएगा, फिर वो द्रव्य ही नहीं बचेगा। समझ में आया क्या कहा, कि अगर एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के अंदर जो अभावपना है ना, 47 शक्ति के अंदर ना भावाभाव शक्ति, कि भावपना भी है और अभावपना भी है। और ग्रंथों में तो कहा था कि अभाव मतलब भावांतर स्वभाव को अभाव कहते हैं, कि अपना जो भाव है उस भाव से अन्य मतलब पर द्रव्य, जैसे पुद्गल का स्वभाव क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल का स्वभाव है। जीव का स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन जानना देखना, ये जीव का स्वभाव है। तो अपने भाव से अन्य, अपने भाव से जो अन्य भाव है उससे अलग होना, उसका नाम ही अभाव है। बराबर है, समझ में आया। और अगर अपन कहें कि जैसे अभी अंगूठी है, बराबर है, अंगूठी है, अब अंगूठी जो है अभी वो पहले कैसी थी, जब बनी होगी तो क्या था, सबसे पहले मेटल, सोना था, बराबर है, सोना था। अब उस सोने के भी और आगे अपन जाएं तो जब वो सोना उस माइल से निकला होगा तो कैसा निकला होगा, मिट्टी वगैरह के साथ में, काली माँ के साथ में निकला होगा। टोडरमल जी ने चार उदाहरण दिए मोक्षमार्ग प्रकाशक में। एक कहा स्वर्ण और किट्ट काली माँ, मतलब सोना काली माँ से युक्त। एक कहा तुष और तृण, मतलब अनाज जो भूसे के साथ, जब अपन फसल उगाते हैं ना तो फसल में तो अपना लक्ष्य तो क्या है, अनाज का है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या और आता है, जो भूसा जो तृण है वो उसके साथ में आता है। एक कहा तिल और तेल, कि हमें तेल चाहिए, वो तेल है किसमें, तिल में है। तो अब ये प्रश्न किया कि वो तेल तिल से अलग है कि नहीं है, समझ में आया। क्या कहा, तेल चाहिए, तिल में से तेल निकालना है, तो वो जो तेल जो निकला वो तिल से अलग था कि उसी का उसी में था, था तो उसी में लेकिन फिर भी उससे अलग था। और चौथा उदाहरण दिया दूध और पानी का, है ना, हमारे जनरल डेली यूज का, है ना, दूध वाला दूध देता है तो एक लीटर दूध में या दो लीटर दूध में उसने आधा लीटर पानी मिलाया तो दूध कितने लीटर हो गया, दूध कितने लीटर हुआ, तो आप पैसा कितने का देते हो, पैसा कितने का देते हो, ढाई का देते हो, दो का देते हो, पैसा तो ढाई का देते हो ना, फिर इतनी तो समझ है हमें, उसको बोलना चाहिए ना कि हम तो दो का ही देंगे भाई, आधा लीटर तो क्या है, पानी है ना, आधा लीटर तो पानी। चलो और आगे, उस दो लीटर दूध में दो लीटर पानी मिलाया, अब दूध कितना हुआ, उस दो लीटर दूध में मैंने पचास लीटर पानी मिलाया, अब दूध कितना हुआ, अब तो दूध ही नहीं बचा, है ना, अब तो दूध ही। लेकिन इतना होने के बाद भी दूध कितना है, दो लीटर है। मतलब दृष्टि अपने को कहाँ करनी है उस बात पे, कि इतना सब होने के बाद भी जो दूध का स्वभाव है वो तो उतना ही रहा, वो कभी भी पानी रूप नहीं हुआ। आता ना हंस का उदाहरण आता है, सबने सुना होगा कि वो राज हंस होता है, वो दूध और पानी जो मिश्रित होता है उसमें से दूध दूध ग्रहण कर लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। मतलब एक पक्षी, एक हंस ऐसा होता है, अपने यहाँ पे ऊपर चढ़ते हैं ना तो वहां पे एक म्यूरल्स रखा हुआ है, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे जब अपन स्टेयर्स पे चढ़ते हैं ना तो वहां एक म्यूरल्स रखा हुआ हंस का, कि वो हंस का क्या करता है कि वो जो दूध और पानी है उसको क्या करता है, भिन्न कर देता है। तो अब प्रश्न ये था कि वो दूध और पानी मिला था कि नहीं मिला था, समझ में आया। क्या कहा, वो दूध और पानी मिला था कि नहीं मिला था, अगर मिला, अगर मिल जाए तो फिर कभी अलग नहीं हो सकता ना, अगर वो आपस में मिल जाए तो वो कभी फिर अलग नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये जो कर्म आदि या पुद्गल आदि है ना, दूध और पानी, वैसे ये जीव और क्या, कर्म। तो ये जीव जैसे ना, दो लीटर में अपन ने कितना लीटर, पचास लीटर पानी मिलाया तो अब वो दूध दिखता नहीं है, उसी प्रकार हमने जीव में क्या किया है, क्या मिलाए हैं, कर्म, मतलब इतना कचरा कर दिया है कि अब जीव दिखाई ही नहीं देता समझ में आया। क्या, जैसे दूध में, दो लीटर दूध में हमने पचास लीटर पानी मिलाया और किसी से बोले बता कितना दूध है, वो बोलेगा दूध कहाँ है ना, दिखता ही दूध और दिखता ही नहीं है। उसी प्रकार हमने अपने स्वभाव के अंदर इस जीव द्रव्य के अंदर कर्म को, संयोग को, घर को, पैसा को, स्त्री को, पुत्र को, मकान सबको हमने क्या किया है, मिला दिया है, है ना। किसका घर है, किसका घर है, अभी तो कह रहे हैं घर घर का है जब सामने आपसे खड़ा होके घर के सामने है ना साइन करवाए जाएंगे कि ये घर हमारे नाम कर दो, तब घर किसका होगा। तो ये चीज है कि हमने अपने स्वभाव के अंदर इतनी चीजें मिक्स कर ली हैं और वो हमको मिक्सअप लगता ही नहीं है, वो मिक्सअप हमको मिक्सअप लगता ही नहीं है। कभी हमको लगता ही नहीं है कि ये घर तो पुद्गल का है, कभी हमको लगता ही नहीं है जितना भी मेरे पास परिग्रह है वो तो किसका है, पुद्गल का है। और पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य कैसे हैं, अलग अलग है, ऐसा हमको भासित ही नहीं होता। तो उसके लिए ये अभाव की बहुत आवश्यकता है। ये जो अभाव का ज्ञान होना कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में क्या है, अभाव है ना। अब अभाव के नाम तो आप सबको आते ही होंगे, कितने अभाव हैं, चार अभाव हैं। अच्छा, नाम बोलने से पहले किस किस को नहीं आते हाथ ऊपर करो, क्लास है कोई, हाँ किस किस को अभाव के नाम नहीं आते, हाँ चलो अच्छी बात है। हाँ, अभाव कितने हैं, चार अभाव हैं। अभाव कितने हैं, चार हैं। सबसे पहला है प्राग भाव, है ना, सबको दोहराना है क्योंकि जिसको आता नहीं है उसको याद करना है और जिसको आता है उसको अपने धारणा में पक्का करना है, बराबर है। सबसे पहला है प्राग भाव, बोलो प्राग भाव, पहला है प्राग भाव, दूसरा प्रदवंशा भाव, प्रदवंशा भाव, तीसरा अन्योना भाव, अन्योना भाव, और चौथा है अत्यंता भाव, अत्यंता भाव। चौथा अत्यंता भाव, तीसरा अन्योना भाव, दूसरा प्रदवंशा भाव और पहला प्राग भाव, बराबर है। कितने भाव हुए,
चार।
लेकिन हमने तो अभी सब भाव भाव का, अभाव तो हमने कहा ही नहीं, है ना, क्या कहा, प्राग भाव, प्राग
भाव,
प्रदंसा
भाव,
अन्योना भाव, अत्यंता
भाव।
तो अभाव किधर गया, हाँ उसमें ही है। तो जैसे प्राग भाव है तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो प्राक प्लस अभाव कैसा आ जाएगा, प्राक, प्राक मतलब पहले वाला, प्राक मतलब पहले वाला, पहले वाला मतलब जो पास्ट में हो गया, जो पास्ट में हो गया उसका अभाव, किस में अभाव, प्रेजेंट में, वर्तमान में अभाव होना, उसका नाम है प्राग भाव ना। जनरल अभी बुक से नहीं चल रहे अपन, जनरल समझ रहे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले हमें वर्ड का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्ड का नाम ही याद नहीं होगा तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। टोडरमल जी ने सबसे पहले कहा निर्देश, निर्देश मतलब कि जिस भी चीज को हम समझ रहे हैं उसका सबसे पहले हमें शाब्दिक ज्ञान होना जरूरी है। जब तक हम उसका शब्द नहीं समझेंगे तब तक उसका अर्थ हमें ख्याल में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो चार अभाव कहे उसमें पहला हो गया प्राग भाव, प्राक मतलब पहले का और अभाव मतलब ना होना, मतलब वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव होना, उसका नाम है प्राग भाव। दूसरा है प्रदवंश अभाव, प्रदवंश मतलब प्रकट होने वाली पर्याय, प्रदवंश मतलब प्रकट होने वाली, जो उत्पन्न होने वाली पर्याय है, मतलब जो फ्यूचर में आने वाली पर्याय है, आगे जाकर होने वाली पर्याय है, उस आगामी पर्याय का इस वर्तमान पर्याय में अभाव होना, उसका नाम है प्रदवंशा भाव, बराबर है। वर्तमान पर्याय है, पूर्व पर्याय का अभाव हो गया प्राग भाव और आगामी पर्याय का अभाव हो गया प्रदवंशा भाव, बराबर है, समझ में आया, आसान है, कोई कठिन नहीं है। चलिए तो अब बताओ आज क्या है, आज क्या है, संडे। डर क्यों रहे भाई, बोलो संडे है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ अलग पूछ लेना, आज क्या है, संडे है। अब संडे में मुझे प्राग भाव प्रदवंशा भाव घटित करके बताइए, सैटरडे का अभाव, एक सेकंड, सैटरडे का अभाव प्राग भाव, सैटरडे का अभाव प्राग भाव, और मंडे का अभाव प्रध्वंस भाव। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। संडे हो गया आज का दिन, आज के दिन में पहले पूर्व वाला जो पास्ट का दिन गया वो कौन सा गया, सैटरडे। सैटरडे का आज में क्या है, अभाव है ना। आज सैटरडे तो नहीं है ना, है आज सैटरडे नहीं, तो सैटरडे का संडे में अभाव प्राग भाव, और मंडे का संडे में अभाव प्रध्वंस भाव। बराबर है, इसके ये हो गए दो। इसके बाद तीसरा नंबर का आता है अन्योना भाव, है जिसकी तीसरे और चौथे की चर्चा अपने को करनी है। तीसरा है अन्योना भाव, अन्य का अन्य में अभाव, मतलब एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव होना, उसका नाम है अन्योना भाव। मतलब ये पुस्तक का इस ठवणी के में क्या है, अभाव, अन्योना भाव। ये दोनों कैसी है, अन्य अन्य है पुद्गल, ये भी पुद्गल है और ये भी पुद्गल है, लेकिन इस पुद्गल की पर्याय का इस पुद्गल की पर्याय में क्या है, अभाव है। कैसा अभाव है, अन्योना। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अन्य पुद्गल द्रव्य की, द्रव्य एक ही है ना, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अन्य पुद्गल द्रव्य की, या और अगर कहें अन्य अन्य, अन्य पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अन्य पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव होना, उसका नाम है अन्योना भाव। बराबर है, उसके बाद आता है अत्यंता भाव। वापिस से, पहला अभाव कौन सा है, प्राग भाव, दूसरा प्रध्वंसा भाव, तीसरा अन्योना भाव, चौथा अत्यंता भाव। बराबर है, पूछ लू किसी से भी, पक्का, हाँ बोलो, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा, हाँ, पहला प्राग भाव, दूसरा प्रध्वंसा भाव, तीसरा अन्योना भाव, और चौथा अत्यंता भाव। तो अब ये चौथा जो अभाव है इसका नाम है अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव मतलब कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में मतलब कभी भी नहीं मिलना। अत्यंत अभाव मतलब देखो, एक है नॉर्मल अभाव। नॉर्मल अभाव मतलब इसके पहले जो अपन ने चर्चा की अन्योना भाव की, अब थोड़ा समझना क्योंकि ये चीज में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अन्योना भाव और अत्यंत अभाव में क्या अंतर है, एक तो वो पुद्गल द्रव्य के उसके ऊपर वर्तमान पर्याय में है, लेकिन जैसे ये घड़ी है और ये शरीर है, या फिर ये शरीर है और ये भूमि का कण है, बताओ दोनों में कौन सा अभाव है। ये शरीर के परमाणु में और ये धरती के परमाणु में कौन सा अभाव है, वापिस से समझना। ये शरीर के परमाणु में और धरती के परमाणु में कौन सा अभाव है, अन्योना भाव है। अत्यंत अभाव क्यों नहीं है ये बताओ, और जनरल थिंकिंग बता, नहीं है शास्त्र की, नहीं जनरल थिंकिंग, नहीं, लेकिन अपन कह सकते हैं ना कि ये और ये कभी एक शरीर है और धरती, इसमें तो अत्यंत दिख रहा है ना, बिल्कुल ही अलग है शरीर और ये, तो बिल्कुल पर्याय पुद्गल की है, बराबर है, लेकिन और समझना क्या है। देखिए इसका एक बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको कि ये पुद्गल है, इसकी जो पर्याय है, परिणमन तो पर्याय में हो ही रहा है, बराबर है, लेकिन पर्याय का स्वभाव ही परिणमना है। ये जो शरीर है, ये शरीर की पर्याय जब अपनी मृत्यु हो जाती है, इसको जला देते हैं, क्या बन जाती है, राख बन जाती है। राख बन के किस में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। तो ये जो पुद्गल द्रव्य की, इसके लिए इसमें त्रिकाल अभाव क्यों नहीं कहा, अत्यंत अभाव क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये जो पुद्गल के जो कण है ये कण तो आगे चल के मतलब बहुत टाइम के बाद कभी कभी ये शरीर के परमाणु धरती रूप भी परिवर्तित हो सकते हैं, समझ में। ये जो शरीर के जो परमाणु है वो कालांतर में धरती रूप भी परिणमित हो सकते हैं, अनाज रूप भी परिणमित हो सकते हैं, कभी किसी दूसरे अवस्था रूप भी परिणमित हो सकते हैं। इसके लिए उनमें अत्यंता भाव नहीं है। अत्यंता भाव मतलब त्रिकाल अभाव, किसी भी काल में किसी भी तरह से मिलना नहीं, उसका नाम है अत्यंता भाव। समझ में आई बात। अत्यंता भाव मतलब कि वो चाहे किसी भी काल में आप देखो, किसी भी काल में वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, उसका नाम है अत्यंता भाव। लेकिन यहाँ जो पुद्गल की जो पर्याय है वो पर्याय भविष्य में या कहा जाए कि भूतकाल में ना, ये जो शरीर था ये शरीर के परमाणु कभी धरती रूप भी थे, कभी किसी दूसरे रूप भी थे, है ना, वो परमाणु में परिवर्तित हुआ और परिवर्तन होके कभी अनाज के परमाणु धरती रूप हो गए, धरती के परमाणु अनाज रूप हो गए, कभी भूसे रूप हो गए, कभी शरीर रूप हो गए, कभी किसी दूसरे पदार्थ रूप हो गए। तो उनमें वर्तमान पर्याय अपेक्षा तो अभाव है, समझ में आ रहा है। वर्तमान पर्याय की अपेक्षा तो इसकी वर्तमान पर्याय और मेरी वर्तमान पर्याय बिल्कुल अन्य अन्य है, तो उस अपेक्षा से तो अन्योन्य भाव है। लेकिन कभी आगे चलकर किसी काल में ये परिवर्तित भी हो सकते हैं, इसके लिए अत्यंता भाव नहीं है। और ये जीव मतलब जो अपनी आत्मा है और ये जो शरीर है, ये दोनों कैसे हैं, ये कभी भी किसी भी काल में मिलने वाले नहीं है कि अभी तो नहीं लेकिन आगामी काल में कि ये आत्मा शरीर रूप हो जाए या शरीर आत्मा रूप हो जाए, ऐसा हो सकता है नहीं। अभी तो नहीं, अभी साइंस ने बहुत वो कर ली है ना, आगे चल के आत्मा को शरीर रूप में कन्वर्ट कर दे, कोई ऐसी मशीन बना दे, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में क्या है, अत्यंत अभाव है। इन दोनों में क्या है, अत्यंत अभाव है। अब इस अत्यंत अभाव में ना क्या हो गया, अत्यंत अभाव, देखो कितनी अच्छी बात है कि अत्यंत अभाव अगर अपन समझ ले, ये जो अभाव है ये अभाव अगर हम समझ ले तो कोई टेंशन ही नहीं। क्यों, टेंशन क्या है, आज इसने मेरा बुरा कर दिया है ना, इसने हमारे ऑफिस के अंदर, हम चार लोग हैं बराबर, हम सेम पोजिशन पे हैं और इसने बॉस को चापलूसी करके या कुछ भी करके इसने मेरा प्रमोशन छीन लिया, अटकवा दिया है ना, इसने मेरा प्रमोशन छीन लिया, या ऐसा कहा जाए कि इसने मतलब मुझे ऐसा घाटा करा दिया, या इसने मेरी दुकान के बगल में दुकान खोल ली सेम प्रोडक्ट की, तो मेरे सारे कस्टमर इसने अपनी दुकान पे खींच लिए। तो ये जितना भी दुख है, ये जितनी भी जाति का दुख है, वो सारा दुख क्या हो जाए, क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। कैसे, अगर हमें अभाव समझ में आ जाए कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में क्या है, अभाव है, है ना, इसका इसकी दुकान का मेरी दुकान में अभाव है, है ना, इस द्रव्य का इस पुद्गल का मेरे अंदर क्या है, अभाव है, मेरे सुख दुख का कारण कर्ता ये नहीं है। क्योंकि अपन जब निमित्त की परिभाषा भी अपन कहते हैं तो क्या कहते हैं, निमित्त किसे कहते हैं, बोलो सब भूल गए, निमित्त किसे कहते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते जाओ और पीछे की चीजें गायब होती जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। निमित्त किसे कहते हैं, लेकिन नहीं पूरी अच्छी परिभाषा, आरोप किया जाए और, लेकिन और बोलो, हाँ बोलिए, स्वयं परिणमती हुई वस्तु के परिणमन में क्या कहा, स्वयं परिणमती हुई, निमित्त की क्या कहा, सबसे पहली कंडीशन क्या कही, स्वयं परिणमती हुई। तो जब ये चीज हमारे ख्याल में आ जाएगी कि स्वयं परिणमती हुई है ना, किसी जैसे अपने किसी के फादर ऐसा कहे कि हमने अपने बच्चे को 20 साल का कर दिया है ना, हमने अपने बच्चे को बड़ा कर दिया, 20 साल का कर दिया, कितने साल में किया, कितने साल में किया, तो तुमने क्या किया, समझ में, कि ये जो चीजें हैं कि जब हमें ख्याल में आएगा कि इस द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कुछ चलता ही नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। मैं जितनी मेरी जो मान्यता चल रही है कि मैंने इसके मैं अगर चाहूं, है ना, खाना कौन बनाता है, हम बनाते हैं, हम चाहें तो खाना बनाना बंद कर दे, है ना, कल से खाना बंद। तो कहना गुरुदेव तो कितना कहते कि बाई रोटली रोटी बनाती है ना, बाई रोटी तो छोड़ो, आटा और रोटी में भी क्या है, अभाव है। बाई रोटी तो अलग हो गया, बाई और रोटी में तो हमें दिख ही रहा है, इतना तो हम मुमुक्षु जीवन, इतना तो हमें समझ में ही आता है कि बाई और रोटी में तो अभाव दिखता ही है, कि रोटी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है और बाई जीव द्रव्य है, उसकी अपेक्षा जीव की अपेक्षा से कहा जाए। लेकिन इतना कहा कि ये जो रोटी है उस रोटी में और उस आटे में भी आपस में अभाव है। अब आप लोग बताओ कौन सा अभाव है, और आगे चलो पुराने वाले जो अभी सबसे पहले पहला दूसरा बोला था ना उसमें बोलो, रोटी के अंदर किसका अभाव है, आटे का, कौन सा, क्योंकि वो रोटी क्या आटे की, आटा जो था वो उसकी पहले की भूतकाल की पर्याय थी, वो आटा बाद में रोटी रूप हुआ, बराबर है, आटा बाद में क्या हुआ, रोटी रूप हुआ, तो कौन सा अभाव हुआ, प्राग भाव। पहले की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव होना प्राग भाव। अब वो रोटी है ना अंदर जाके जिस भी रूप में परिवर्तित होगी उसमें इसका प्रध्वंस अभाव हुआ। और अगर और अपन ऐसा अन्योन्या भाव भी घटित कर सकते हैं कि एक साइड में आटा रखा हुआ है और एक साइड में जो बन गई रोटी है वो रोटी रखी हुई है, तो इस पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का इस पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में क्या है, अन्योन्या भाव है, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय अलग है और इस पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय क्या है, अलग है, तो ऐसा अन्योन्या भाव है। और अत्यंता भाव कि ये जो रोटी है और इसको जो बनाने वाली है उन दोनों में अत्यंता भाव है। तो अब बताओ रोटी कौन बनाता है, कौन बनाता है, अब इसमें ना देखो श्रद्धा का विषय आ जाता है, बहुत चीजें अपने को निर्णय करें, है ना, स्वयं बनती है ठीक है तो कल से आप बना लेना, हम तो बनाना है ना, भोजन कौन, अब इसमें और देखो भोजन कौन करता है, चलो खाता कौन है, शरीर खाता, पुद्गल खा सकता है, क्वेश्चन समझ में आया, खाता कौन है, जीव खा सकता है, पुद्गल खा सकता है, पुद्गल भी नहीं खा सकता, सबके अपने अपने स्वभाव है, पुद्गल भी नहीं खा सकता, जीव भी नहीं खा सकता, ये दोनों का एक निमित्त नैमित्तिक संबंध को अपन ने भोजन का नाम दिया है। लेकिन हमको क्यों कहे, अगर आत्मा खा ले, है ना, अपन कहते हैं खाना नहीं खाए तो मर जाए और यहाँ कहते हैं खा ले तो मर जाए, समझ में क्या कहा, हम कहते हैं भोजन ना करे, है ना, 10 दिन का उपवास कर ले, अभी गए ना 10 लक्षण, 10 दिन का उपवास करने के बाद कैसा लगता है कि अब बिल्कुल हालत ऐसी हो जाती है, लोग उपवास करते हैं तो घर पे बस आराम करने, ना ये अलग विषय है एक 10 लक्षण का भी, कि जो उपवास करते हैं ना 10-10 दिन के उपवास करते हैं, तो उपवास किसके लिए किए जाते हैं, कि ये जो बाहर की जो प्रवृत्ति चल रही थी ना कि खाना बनाना खाना खाना ये सब, तो इन सब से क्या हो गया, निवृत्ति हो गई, तो वो निवृत्ति का समय मैं किसमें लगाऊं, अपने मतलब स्वाध्याय आदि में, उपवास है ना, अपने निकट रहना, अपने कार्य में लगाऊं, मंदिर आदि में लगाऊं, स्वाध्याय आदि में लगाऊं। लेकिन अभी क्या होता है, 10 दिन का उपवास किया तो ऐसे बेड पे पड़े रहते हैं, है ना, घर वाले भी कुछ नहीं बोलते, अरे इनसे कुछ मत कहो, इनका क्या है, उपवास है ना, इनको कुछ काम के नहीं, वो पूरे दिन टीवी चला के और टीवी के सामने बैठे रहते हैं, इसके लिए उपवास नहीं होता है। बहुत अपने को मतलब समझ, अपन करना है ऐसा उपवास का निषेध नहीं है, करो, लेकिन उसको समझ के करो कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका कारण क्या था, है ना, उसका, क्योंकि पहले जो उपवास आदि, तो वो इसके लिए कि जितना समय हमने उस दूसरे कार्य से बचाया उस समय को हम अपने लिए निकालें, अपने लिए निकालें मतलब ना अपने साथ संगार के लिए नहीं, अपनी जो आत्म स्वभाव है उसको जानने के लिए, थोड़ा स्वाध्याय करने के लिए, मंदिर में थोड़ा समय बिता, इसके लिए निकालें, लेकिन वो अलग विषय है, चलो उसको छोड़ो। बात क्या थी कि भोजन कौन करता है, खाता कौन है, है ना, कि हम कहते हैं कि हम नहीं खाएं तो मर जाएं और यहाँ कहते हैं खा ले तो मर जाएं, कि ये ऐसा कह दिया ना कि आज जैसे हम भैया ने कह दिया कि आत्मा तो खाता नहीं है, तो कल से क्या करें, खाना बंद कर दे। ठीक है, जब तक चारित्र मोह का उदय है, तो चारित्र मोह के उदय के कारण ये प्रक्रिया, ये जितनी क्रियाएं चलती हैं, उस जाति का राग तो इस जीव के आता ही है ना, सम्यक दृष्टि के भी उस जाति का क्रिया और राग रहता है, लेकिन उसकी आसक्ति उसमें नहीं रहती। जब हम ये जो अभाव समझ लेंगे कि ये जो भोजन है और भोजन का और आत्मा का कौन सा अभाव है, बोलो बोलो, अब बिल्कुल ख्याल पकड़ आ जानी चाहिए ना, क्लास खत्म होते होते पकड़ आ जानी चाहिए कि बिल्कुल बोला जाए इसमें और इसमें कौन सा अभाव है ना, पीछे वाले में और आगे वालों में कौन सा अभाव है, अभाव ख्याल में आ जाना चाहिए बिल्कुल, कि ये जो भोजन जो मैं कर रहा हूं उस भोजन में, अब इतना अभाव ख्याल में आ जाएगा ना, तो फिर ये जितना लड़ाई झगड़ा है ना कि आज खाने में नमक कम है ना, आज ये मिठाई नहीं है ना, आज ये है, ये एक बार अभाव ख्याल में आ जाएगा तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस भोजन का और मेरा अत्यंत अभाव है। और स्पष्ट किया जाए, वो भोजन, उस भोजन में डाला हुआ नमक, सब्जी बनती है ना, सब्जी के अंदर कई सारे मसाले डलते हैं, बराबर, कई सारे मसाले डलते हैं, नमक भी डला, मिर्ची भी डली, धनिया भी डला, नींबू, सब तरह के मसाले डलते हैं। अब ये बताओ, जो सब्जी आपके सामने रखी है उसमें नमक अलग है कि नहीं है? समझ में आया प्रश्न? समझ में आया? आपके सामने कटोरी में सब्जी रखी है ना, घर पे जाके खाना खाना तो सब प्रैक्टिकली करना, उसमें नमक अलग है? दिखाओ कहाँ है। मिला हमको स्वाद, और ऐसा कोई बता ना कि स्वाद भी हमको कहते हैं ना कि स्वाद नहीं आता अलग अलग, अगर स्वाद अलग नहीं आता तो आपको कैसे पता पड़ता नमक कम है? अगर अपने को स्वाद अलग नहीं आए, अगर इसने कह दिया कि सब मिल गया, अब तो सब एक जैसा हो गया है ना, अगर मिल गया तो हमको मिर्ची का नमक का स्वाद कैसे अलग आता है कि इसके अंदर आज तीखा वधारे से है ना, तीखा क्या है, ज्यादा तीखा है, इसमें नमक ज्यादा डल गया है, इसमें हल्दी ज्यादा डल गई, तो मिला हुआ होने के बाद भी ख्याल में आता है कि नहीं आता? मिला हुआ होने के, तो ये अभाव है, ये क्या है, अभाव है, कि नमक के खारेपन का, नमक के खारेपन का मिर्ची के तीखेपने में क्या है, अभाव है, नमक के खारेपन का मिर्ची के तीखेपन में अभाव है, नींबू के खटासपन में अभाव है। तो ये सब अभाव जब समझ में आएंगे तो ये धीरे धीरे, कि देखो ये तो सब उदाहरण है, मुख्य बात तो हमें अपने उस पे लेनी है कि मैं अभी कैसा हूं, कि मैं मान लो मैं अभी मैं बहुत पापों में इसमें लगा हुआ हूं, या पूर्व में मैंने बहुत पाप किए, तो जब मुझे अभाव समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा, कि पहले की पर्याय का वर्तमान पर्याय में क्या है, अभाव है। मैंने पूर्व में कितने भी पाप कार्य किए हैं, कितने भी कैसे भी मैंने पाप कार्य, ऐसा अपने को लगता ना, अरे मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मेरा भला कैसे होगा, मेरा सुधार कैसे होगा, तो उसको ये अभाव समझाते हैं कि पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में क्या है, अभाव है। पूर्व की पर्याय में तूने कितने ही पाप किए हो, लेकिन वर्तमान में अगर तू अपने स्वरूप का ख्याल करेगा तो तेरा कल्याण हो सकता है। आते ना कितने उदाहरण आते हैं, अंजन चोर का उदाहरण आता है, कथा आपने प्रथमानियों पढ़ना चाहिए भाई, थोड़ी थोड़ी कथा पढ़नी चाहिए है, खाली ऐसा नहीं कि खाली अपन द्रव्यनियोग या आत्म तत्व के उस पे, अपने को हर तरह का प्रथमानियोग भी ख्याल में आना चाहिए। अंजन चोर का कथानक आता है कि वो कैसा चोर है ना, कितना चोर, लेकिन जब उसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया तो पूर्व के पर्याय का वर्तमान में क्या है, अभाव है। और मैं आपको एक उदाहरण दूं, महाभारत तो सबने नहीं सुनी होगी है ना, सब ऐसे शांत बैठे हैं, अभी नई पिक्चर आ रही है महाभारत की। तो महाभारत जो है उसके अंदर जो पांडवों की चर्चा आती है, तो जैन महाभारत जो है उसके अंदर जो पांडवों की चर्चा आती है, उसमें जो द्रौपदी वाला जो कथानक आता है, उसमें एक कथानक एक जगह ऐसा आता है कि जब पांडवों को वो जो खेल में वो हार गए और उनको देश से निकाला, दे दिया कि पांडवों को और द्रौपदी को क्या किया, देश निकाला दे दिया, कि आप हार गए थे ना वो चौसठ उसके खेल में, वो सब हार गए थे, उनको देश से निकाला दे दिया। अब वो दूसरे एक विराट नगर करके एक नगर था, उस नगर में एक राजा के यहाँ पे द्वेष बदल के रहते थे, पढ़ना आप, उसमें अर्जुन नृत्यांगना के रूप में वेश बदल के रहता था, भीम आदि घोड़े के अस्तबल के अंदर वो घोड़े को धुलाई आदि का कार्य करते थे, एक पहलवानी का कार्य ऐसा कर, ऐसे वेश बदल बदल के जो द्रौपदी थी वो श्रृंगार करने वाली, ऐसा अलग अलग वेश बदल के रहते थे। तो अब उसमें जो राजा, जो वहां का राजा था, उसका एक संबंधी था जिसका नाम कीचक था, वो कीचक ने द्रौपदी को देखा और उसको एकदम से देख के उस पर आसक्ति का भाव हो गया। अब उसको आसक्ति का भाव हुआ तो उसने द्रौपदी से आसक्ति का भाव में बात की, तो अब द्रौपदी ने देखा कि इसको गलत परिणाम है, तो उसने बोला उसको कि आप शाम को आना, तब मैं आपसे बात करूंगी, कि अभी उसने जैसे होता ना, उसको लगा कि अभी मैं अकेली हूं, तो उसने बोला कि आप शाम को आना। वो चला गया, शाम को उससे पहले उसने भीम को बताई ये बात कि ऐसा ऐसा हुआ था। वो जब कीचक आया तो भीम पहले से ही वहां पे विद्यमान थे, तो उन्होंने उस कीचक की पिटाई कर दी, है ना, कि कोई दूसरा अगर गलत कार्य करेगा तो उसने उनकी पिटाई कर दी। तो जब उसकी पिटाई हुई उस समय कीचक को ऐसा परिणाम आया कि अरे मेरे कितने गलत परिणाम थे, कि मुझे इस परिणाम के कारण, ये जो मैं पिट रहा हूं वो किसके कारण, ये जो मैंने काम भाव के परिणाम किए थे, इस परिणाम के कारण मुझे ये दंड मिल रहा है। तो ऐसे मैंने परिणाम कितने किए होंगे कि जिसके कारण मुझे इस संसार में दंड मिल रहा है। तो तुरंत उसके परिणामों में पलटा हुआ और वो कीचक ने जंगल में जाकर मुनि दीक्षा धारण कर ली। अब यहां अभाव समझना कि पहले काम का जो भाव था, पहले का कामी कीचक और अभी का मुनि कीचक, पहले का कामी कीचक अभी का मुनि कीचक, कि पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, और अभी का जो मुनि कीचक, फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा है, अभी प्रधंस भाव लगाएंगे तो केवल ज्ञानी कीचक में और मुनि कीचक में क्या है, समझ में आ रहा है, समझ में आया, कामी कीचक वाली पर्याय का मुनि कीचक वाली पर्याय में क्या हुआ, प्राग भाव, पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, मुनि कीचक वाली पर्याय में केवली कीचक वाली पर्याय का प्रध्वंस भाव। तो मैं इसके लिए आपको समझा रहा हूं कि परिणामों का जो पलटना है, तो जब हम अभाव समझेंगे तो हमको ये तुरंत ख्याल में आएगा कि पूर्व में चाहे हमने कैसे भी गलत परिणाम किए हैं, लेकिन फिर भी अगर वर्तमान में हम अपने स्वरूप के ऊपर लक्ष्य करें तो वो सारे परिणाम कैसे हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं और हम अपना ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में क्या है, अभाव है, प्राग भाव है। और वर्तमान में भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो भी भविष्य के अंदर भी, ना, भविष्य की पर्याय में भी इस वर्तमान पर्याय का प्रध्वंसा भाव है ना, वो कामी कीचक मन से मुनि कीचक हुआ और फिर उसने अपने स्वरूप का ध्यान किया तो शीघ्र ही वो मुनि कीचक से केवली कीचक बने और केवली कीचक से क्या बने, सिद्ध कीचक के रूप में परिणमित हुए। तो ऐसे मतलब एक पर्याय का दूसरे पर्याय में क्या है, अभाव है। हम यहाँ बैठे हैं, बराबर, यहाँ बैठे बैठे एक समय पहले की पर्याय कैसी थी, भिन्न थी, भिन्न थी कि नहीं थी। हम जब बार्बर के पास, नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए जाते हैं, बराबर है, बाल, आज हम बाल कटवा के आए, एक महीने बाद क्या होता है, बाल बढ़ गए, तो वो बाल कितने कब बढ़े, एक महीने बाद बढ़े, कब बढ़े, दो दिन बाद बढ़े, एक दिन बाद बढ़े, इतना कहते हैं कि जिस समय वो बाल काट रहा है, जिस समय वो बाल काट रहा है उसी समय उन बालों का बढ़ना चालू है, जिस समय वो बाल काट रहा है उसी समय बालों का बढ़ना चालू है ना। इसके लिए पर्याय, क्योंकि पर्याय कैसी है, प्रति समय परिणामशील है, क्योंकि पर्याय की परिभाषा ही क्या है, गुणों में होने वाले प्रति समय के परिणमन को पर्याय कहते हैं। अगर पर्याय में से परिणमन पना निकाल दिया जाए अगर पर्याय में से परिणमन पना निकाल दिया जाए तो पर्याय बचेगी?
नहीं।
अगर द्रव्य में से गुण निकाल दो तो द्रव्य बचेंगे? आकाश का गुण क्या है? बराबर है। काल का गुण क्या है? धर्म का गुण क्या है? अधर्म का स्थिति हेतु। बोलो, जीव का ज्ञान दर्शन। हाँ तो अच्छा है ना, नॉर्मल ज्ञान दर्शन। पुद्गल का स्पेशल। अगर द्रव्य में से गुण निकाल दिए जाए, है ना, अगर पुद्गल में से इसमें से स्पर्श रस गंध वर्ण निकाल दिया जाए तो इसकी सत्ता रहेगी कि नहीं? नाश हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे जीव में से अगर ज्ञान दर्शन निकाल दो तो उसका, तो निकाला नहीं लेकिन इसका स्पर्श रस गंध वर्ण मैंने जीव में मिला दिया, तो पहला प्रश्न तो है कि मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? आवाज ही नहीं आ रही, मिल सकते कि नहीं? मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, मैंने ऐसे एक टेक्नोलॉजी, एक ऐसा मिक्सर किया, उसमें जीव को डाला और बाकी सब घर संयोगों को डाला और उसके बाद वो मिक्सर को ऑन कर दिया, तो बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिक्सर में तो सब मिल जाता है ना, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिक्सचर ऑन है। अब समझना, ये जो मिक्सचर है वो मिक्सचर ऑन है। कैसे ऑन है, समझ में आ रहा है? मिक्सचर ऑन है मतलब कि करंट समय में भी, प्रेजेंट में भी अपना वो मिक्सचर ऑन है। कैसे ऑन है? क्योंकि मैं जो हूं अभी, मैं जो आत्म तत्व हूं, उस आत्म तत्व के साथ में मिक्सचर क्या मिलाने का ही काम करता है ना, तो मेरा भी मिक्सचर क्या कर रहा है कि मिल ही रहा है। अभी ये शरीर किसका है? मानता किसका हूं? तो ये क्या है, मिक्सर है कि नहीं है? ये जो शरीर है, इस शरीर को मैंने किसमें मिला रखा है? बोला ना, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलना ये तो अलग चीज है। क्या कहा? होता ना मिलावट होती है ना, मिलावट के अंदर जैसे दुकान वाले कर लेते हैं, मिलावट कर लेते हैं अलग अलग तरह का, घी में किसी दूसरे चीज की मिलावट, वो मिलावट तो अलग है, लेकिन यहां अब उसमें भी है मिलावट, लेकिन फिर भी प्रश्न है। चलो और आपसे एक पूछता हूं, हमारे घर में हम दाल लेके आए, दाल समझते हैं, दाल लेके आए, ग्रेन्स लेके आए, अब उस दाल में बहुत सारे कंकड़ थे, पत्थर थे, तो हम क्या करेंगे, उन कंकड़ों को अलग कर देंगे, बराबर है, क्लियर है? दाल में से हम क्या करेंगे, कंकड़ अलग कर देंगे। पहला प्रश्न, वो दाल जो हम लेके आए उसमें कंकड़ क्या थे, समझ में आया? आप जब वो दाल परचेस करके लाए तो उसमें कंकड़ क्या थे, मिले हुए थे कि नहीं थे? मिले हुए थे कि नहीं थे? अगर मिल जाते, अगर दाल में वो कंकड़ मिल जाते तो वो अलग नहीं हो सकते, तो ये वो मिलावट, जो मिलावट दिख रही है वो मिलावट भी कैसी है, अलग अलग है। जो मिलावट हमको दिख रही है, हम कहते तो हैं, कहा तो जाएगा कि वो दाल में कंकड़ कैसे हैं, मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी मिले हुए होने के बाद भी दोनों कैसे हैं, पृथक पृथक है। ऐसा अभाव शक्ति इसका नाम है कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य साथ में दिखाई देने के बाद भी ये शरीर या आत्मा साथ में दिखाई देती है। दिखाई देने के बाद कथन करने में भी आएगा, कथन करने में भी आएगा कि आत्मा शरीर का क्या है, एक क्षेत्र का संबंध से संयुक्त है, लेकिन फिर भी दोनों कैसे है, भिन्न भिन्न है। दोनों में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। चलिए बुक के अंदर जो अत्यंत भाव की जो डेफिनेशन है, प्रश्न क्रमांक 114 पे, हाँ 324, क्या कहा? अत्यंत भाव कोने कहे से एक द्रव्य नो बीजा द्रव्य में अभाव होए तेने अत्यंत भाव, उसमें देखो ब्रैकेट के अंदर एक बिल्कुल क्लियर लिखा है, क्या लिखा है? त्रिकाल। अत्यंत भाव हमेशा, मतलब अत्यंत भाव कहने से ही स्पष्ट होता है कि वो त्रिकाल, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इस काल के अंदर मिल गया, अगले काल में अलग हो गया और अगले काल में फिर मिल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। आकाश कभी भी किसी भी काल में काल रूप नहीं होगा, धर्म रूप नहीं होगा, अधर्म रूप नहीं होगा, जीव रूप नहीं होगा। जीव किसी भी काल में आकाश रूप, काल रूप, धर्म अधर्म रूप नहीं होगा, इसका नाम है अत्यंत भाव। जैसे इसमें देखो 325 में कुमार अने घड़ा वच्चे तथा पुस्तक अने जीव वच्चे क्यों अभाव छे, समझ में आया? अपन ने जैसे कहा ना रोटी और बाई के बीच में कौन सा अभाव है? अत्यंत भाव, क्योंकि वो दो द्रव्य है ना, एक पुद्गल द्रव्य है और एक जीव द्रव्य है। उसी प्रकार कुमार में और घड़े में कौन सा भाव है? अत्यंत भाव है। कुमार में और घड़े में कौन सा भाव है? अत्यंत भाव है। चलो बताओ पेट्रोल में और गाड़ी में कौन सा भाव है? कई बार उसको अत्यंत भाव भी हम कह देते हैं, लेकिन समझना क्या है, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का, जब वर्तमान पर्याय की चर्चा चल रही है ना कि वहां गाड़ी है वर्तमान पर्याय और यहाँ पेट्रोल है वर्तमान पर्याय, तो उन दोनों की वर्तमान पर्याय में जो अभाव है वो अन्योन्य भाव है। इसी में एक प्रश्न है कि गाड़ी पेट्रोल से चलती है कि नहीं चलती, ये प्रश्न बहुत आता था है? पहले गाड़ी पेट्रोल से चलती है कि नहीं चलती, तो बिना पेट्रोल के चला के दिखाओ। समझ में आया क्या प्रश्न क्या किया?
तो
वो समझ, गाड़ी पेट्रोल से चलती है कि नहीं चलती है ना, अपन कहे धर्म के हिसाब से अपन कहे ना कि गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, तो सबसे पहले क्या क्रॉस क्वेश्चन क्या होगा कि बिना पेट्रोल के चला के दिखाओ। तो कई कई बार ऐसा होता है ना, गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है लेकिन फिर भी गाड़ी चलती नहीं है, है ना। गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल फुल है, टंकी बिल्कुल फुल है, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं चलती है। तो कोई कहे गाड़ी टायर से चलती है, है ना, गाड़ी टायरों से चलती है, तो चारों टायर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही टायर है, लेकिन फिर भी गाड़ी कभी चलती। तो ये सब चीजें क्या है, इसे कहते हैं समवाय। इन्हें क्या कहते हैं? समवाय। कि एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। आप कभी टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक में समवाय का चर्चा पढ़ना, कि एक कार्य के होने में, अब कार्य क्या हुआ यहाँ पे, गाड़ी का चलना, ये क्या हुआ? कार्य। अब उस गाड़ी के चलने में जो निमित्त रूप में, जो समवाय रूप में कारण हुए, वो कारण क्या क्या है? अनेक कारण है। उसमें पेट्रोल भी एक कारण है, उसमें टायर भी एक कारण है, इंजन भी कारण है, इंजन ऑयल भी कारण है, हवा भी कारण है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर कारण है। तो एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, जैसे निमित्त रूप के अनेक कारण उसको चलाने में, जो सहायक रूप में, मतलब स्वयं परिणत, लेकिन उसमें परिभाषा क्या है? स्वयं परिणति हुई, कि स्वयं परिणति हुए पुद्गल की द्रव्य को परिणमाने में जो निमित्त है, स्वयं परिणमते हुए जीव को चलाने में जो निमित्त है, स्वयं रुकते हुए जीव को जो ठहरने में निमित्त है, तो ऐसा ही कि ये जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य को जब हम इस अभाव को समझेंगे कि ये जो कुमार घड़ा है कैसा है? अत्यंत अभाव है। ये जो शरीर है और आत्मा है वो कैसी है? अत्यंत अभाव है। शरीर और शरीर के अंदर की आत्मा कैसी है? क्योंकि वो कभी भी किसी भी काल में आपस में मिलती नहीं है, किसी भी काल के अंदर आपस में मिलती नहीं है। धरती और धरती में से निकला हुआ सोना, धरती में से निकला हुआ धातु, धरती में से निकला हुआ एल्युमिनियम, जिंक, अभ्रक, जो भी धातु धरती में से निकलता है, दोनों में कौन सा अभाव है? अन्योन्य भाव है ना। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में क्या है? अभाव होना है। अब उस सोने में भी ना, सोना जो वो निकला काली माँ के सहित, वो सोना निकला, वो एक अवस्था, वो सोना वहां से बिल्कुल क्लीन किया, शुद्ध हुआ, दूसरी अवस्था, और उसके बाद वो सोने की अंगूठी बनी, तीसरी अवस्था। अब इन तीनों में अभाव बताओ। सबसे पहला मैं अवस्था वापस बता देता हूँ आपको। पहला वो सोना जो मिट्टी से मिश्रित जो सोना है वो सोना, दूसरा जो शुद्ध किया सोना है वो सोना, और तीसरा है जो अंगूठी रूप परिणमित हुआ वो सोना। तो सबसे पहला बोलो वर्तमान पर्याय जो शुद्ध सोना है वो वर्तमान पर्याय है, अंगूठी नहीं बनी अभी।
जो पहले निकला था वो प्राग भाव है उसका और वर्तमान में जो सोना है।
हाँ पहले निकला वो प्राग भाव नहीं, उस पर्याय का इस वर्तमान पर्याय के साथ प्राग भाव है बराबर। हाँ प्रधान साहब आप बोलिए। जो फ्यूचर में जो रिंग बैंगल या जो भी ऑर्नामेंट बनेगा उस ऑर्नामेंट का इस पर्याय में इस वर्तमान पर्याय में जो अभाव है वो है प्रध्वंसा भाव है। इसको और अपन ऐसा कहें कि वो शुद्ध सोना यहाँ रखा हुआ है और अंगूठी भी यहाँ रखी हुई है बराबर है, दोनों चीज रखी हुई है। अब उन दोनों चीज में कौन सा अभाव है, क्योंकि दोनों पुद्गल द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव अन्योन्य अभाव है बराबर है। अब ये जो अंगूठी है इस अंगूठी का और इस अंगूठी को पहनने वाले में कौन सा अभाव है, इस अंगूठी का और इस अंगूठी को पहनने वाले में कौन सा अभाव है, इस अंगूठी का इस अंगूठी को पहनने वाले में कौन सा अभाव है, इस अंगूठी का इस अंगूठी को पहनने वाले में कौन सा भाव है, बोलो कौन सा भाव है। तो आत्मा अंगूठी पहनता है क्या,
बनाने वाली की जो शरीर
है। हाँ मतलब वो मैंने उसी समय कहा था कि अपन अपेक्षा से कहें तो अत्यंत भाव है, वैसे तो अपन शरीर की अपेक्षा हाँ वर्तमान पर्याय के अपेक्षा से अन्योन्य भाव, लेकिन अगर अपन द्रव्य के अपेक्षा ऐसा कहें क्योंकि अभी अपन ने वर्तमान में इसको ही माना हुआ है, इसको ही माना हुआ है तो इस अपेक्षा से अत्यंत भाव है। मतलब मैं आपको खाली क्लियर कर रहा हूँ, स्पष्ट है कि अत्यंत भाव कहेंगे ये सोने में और अपने में अत्यंत भाव है, क्योंकि अपन जो कह रहे हैं ना मैं, तो अपन अपने स्वरूप की बात आ रही, वहां अपन शरीर को नहीं गिन रहे। लेकिन जब शरीर की बात आएगी कि ये जो अंगूठी है और इसको पहना हुआ जो शरीर है इन दोनों में अन्योन्य भाव है, क्योंकि अंगूठी तो आत्मा पहनती नहीं है। अब चलो ये जो अंगूठी बनी बराबर है, तो अंगूठी में सोना कितना है, ये तो जिसकी बनी उसको पता हो आपने बैंगल बनवाया बराबर है, बैंगल बनाया तो कितने कैरेट के बने, 18 के भी बनते हैं, 20 के भी, 22 के भी बने, मैंने 18 कैरेट के बनाए। 18 अब कोई जो ज्वेलरी लाइन का होगा ना उसको और क्लियर होगा, 18 कैरेट मतलब कितना सोना, 75% सोना और 25% दूसरा धातु जिसमें चांदी भी आती है दूसरी धातु भी आती है। तो वो जो बैंगल बने 75% सोना 25% अदर धातु, तो अब उसको क्या कहेंगे, वो जो बैंगल है वो किसके बैंगल है बताओ, सोने के हैं कि चांदी के हैं, बोलो समझ में आया मैंने क्या कहा। मैंने बैंगल बनवाए है ना, मैंने सोने के बैंगल बनवाए, अब उस बैंगल में 75% सोना है 25% अदर मिक्सअप है, लेकिन वो जब मैं पहनूंगी तो उस वक्त क्या कहेंगे, किसके हैं, सोने के हैं, किसके हैं, सोने के हैं बराबर है। उसका भेद ज्ञान कब होगा, जब मैं उसको बेचने है, जब मैं उसको बेचने जाऊंगा तब उसका क्या होगा, भेद ज्ञान होगा। क्या भेद ज्ञान होगा कि जब वो कितने का पैसा देगा ज्वेलर, हाँ 75 का भी देगा कि नहीं देगा गारंटी नहीं है, है ना, 75 में से भी फिर वो अलग अलग जो करेगा वो अलग, लेकिन वो मिलावट होने के बाद मेरा प्रश्न क्या है, वो 75% में मिला हुआ होने के बाद भी, मिला हुआ होने के बाद तो सोना चांदी में मिल गया कि नहीं मिला ये पूछना है, समझ में आया प्रश्न, वापिस बोलता हूँ समझना। ये जो बैंगल है जिसके अंदर सोने का बैंगल है, उस सोने के बैंगल में 18 कैरेट का बैंगल है, 75% सोना है 25% दूसरे धातु है, लेकिन कहने में क्या आएगा, किसका बैंगल है, सोने का बैंगल बना ना, कोई कह दे चांदी का है तो हम उससे लड़ जाए, ऐसे कैसे चांदी का है, सोने का बनवाया है ना, तो सोने का ये जो बैंगल है, लेकिन ये बैंगल में जो 25% दूसरी चीजें मिली हुई हैं, उनके मिले हुए होने के बाद वो सोना उससे मिल गया कि नहीं मिला, बराबर है समझ में आया। अगर सोना उससे मिल जाए तो वो अलग
नहीं।
नहीं हो सकता। जब अपन जाते ना वो जो जौहरी है उसको वो कैसे अलग करता है, उसको आग पे तपाता है, तो जो वेस्टेज है वो क्या होता है, सब अलग हो जाता है। और फिर बाद में जो खाली सॉलिड जो सोना है, गोल्ड है, वो गोल्ड जो 75% जो गोल्ड था वो गोल्ड गोल्ड बाकी रहता है ना। इसीलिए कहते मिला, ये अभाव है कि दूसरे द्रव्य का, मतलब दूसरे एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पर्याय में, पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में, भविष्य के पर्याय का वर्तमान पर्याय में, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में क्या है, अभाव है। तो इस अभाव को जब हम समझेंगे तो हमें इतना क्लियर होगा कि अभी वर्तमान में है ना मैं कैसा हूँ, मैं रागी हूँ, मैं देशी हूँ, मेरे साथ कर्म आदि भी क्या है, मिले हुए हैं, है ना। कर्म आदि का कर्म कितने हैं, आठों कर्म है, और मेरे साथ कितने हैं, अभी ऐसा लग रहा है पता नहीं मेरे साथ कितने कर्म हैं, पक्का चार निकल तो नहीं गए अभी, अभी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, चार किसी के चार निकले तो नहीं है, सबके आठ बाकी है ना, मतलब चार निकल जाते तो यहाँ रहते ही नहीं ना, चार निकल जाते तो हम यहाँ रहते ही नहीं। तो अभी जो आठों कर्म है कहाँ है, मेरे साथ है, कहाँ है मतलब कोई अलग नहीं है, मेरे साथ ही है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये जो कर्म है और जितनी भी भार के संयोग आदि जिसको मैंने मिला रखा है मेरे अंदर, वो मिला हुआ दिखने के बाद भी, मेरे अंदर मिला हुआ दिखने के बाद भी कथन करने में ऐसा ही आएगा, ज्ञानावरणी का उदय किसको है, मुझे है, दर्शनावरणी का उदय किसको है, मुझे है, मोहिनी ने किसको दुखी कर रखा है, मुझे दुखी कर रखा है, दर्शन मोहिनी का किसके उदय है, मेरे उदय है। तो कथन करने में तो यही बात आएगी कि ये कर्म आदि ने दुखी किसको कर रखा है, मुझे कर रखा है, लेकिन फिर भी कि वास्तव में दुखी किसके कारण से है, जीव अपने कारण से ही दुखी है, क्योंकि कर्म का और जीव का कौन सा भाव है, अत्यंत भाव है, कर्म में और जीव में कौन सा भाव है, अत्यंत भाव है। है समय तो हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आया, अभाव किसे कहना, ना होना, मतलब एक द्रव्य का या एक पर्याय का दूसरे पर्याय में ना होने का नाम है अभाव। अभाव कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के हैं, पहला प्राग भाव, सब लोग, पहला प्राग भाव, दूसरा प्रदंश भाव, तीसरा अन्योन भाव, चौथा अत्यंत भाव। एक पर्याय का मतलब भूत की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव, प्राग भाव, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में या आगामी पर्याय का वर्तमान में अभाव, प्रदंश भाव, पुद्गल द्रव्य की एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, अन्योन्य भाव, और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव, अत्यंत भाव है। तो जब हम इन चार अभाव को समझेंगे तो हमें ये ख्याल में आएगा, मैं चाहे कितना भी रागी द्वेषी दिखाई देता हूँ लेकिन ये सब कैसे मुझसे भिन्न है, और मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा स्वभाव इनसे भिन्न है। बराबर है, किसी को कुछ पूछना है, ठीक है, समय हो चुका है, चलिए समाप्त जिनवाणी स्तुति करते संक्षिप्त में।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना।